अनुभाग एक। ऐसी शामें होती हैं, आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक, जो जैसा कि कहा जाता है कैलेंडर में दर्ज होती हैं, सजी धजी, क्रमांकित, साफ सुथरी लिखी हुई। और ऐसी शामें होती हैं जो यद्यपि वे स्वाभाविक रूप से दिनांकित भी की जा सकती, फिर भी व्यवस्था का विरोध करती हैं, क्योंकि वे एक ऐसी सीमा पर ली गन जहां समय जेल्प्स्ट ये अत्यंत बुर्जुआ, अत्यंत संविदात्मक सिद्धांत एक बार संक्षेप में अपना धैर्य खो बैठता है। इन सीमा शामों में थाशिंग गहोट, शाल्टाबेंग गहोट और गहोट हमारे वर्तमान में, सिल्वेस्टर की रात, ये अजीब बुर्गर और किंडर फेस्ट जो अपने को शैंपेन से मुखौटाबद्ध करता है और आतिशबाजी से सशस्त्र करता है ताकि एक से दूसरे में संक्रमण वैसा न दिखे जैसा वह वास्तव में है, एक शांत अगोचर कदम। हांस कैस्टॉर्प ये जानता था, बिना जाने हुए वह अवधारणाओं का नहीं बल्कि संवेदनाओं का आदमी था। और फिर भी जब से उसने एक ऐसे तरीके से, जिसका हम यहां आगे वर्णन नहीं करना चाहते क्योंकि कथा पर यह संदेह नहीं आना चाहिए कि वह निर्देश दे रही है, युद्ध से अपने को अलग कर लिया था और अपने को एक ऐसे जीवन में बचा ले गया था जिसे यदि कोई कठोर हो तो विलासी और यदि कोई उदार हो तो केवल सुसंगत कहा जा सकता है, उसने हर उस चीज से एक विशेष संबंध विकसित कर लिया था जो व्यवस्थाओं के बीच लीक्ड, क्योंकि भगोरा भले ही वह होटलों में सोता हो और निर्दोष वेटरों द्वारा सेवा पाता हो, भीतर से एक स्विच एंड ड्रायमे का आदमी बना रखता है। नाम और उपनाम के बीच, शुल्ड और आत्मरक्षा के बीच, दृश्यता और मुखौटे के बीच, और अब वह फिर ऊपर था, आराम के उच्च भूमि में जहां ठंड को सहा नहीं बल्कि क्यूरेट किया जाता है, जहां बर्फ मौसम नहीं बल्कि सजावट है, और जहां नश्वर को दीर्घायु वायदे की सदस्यता बेची जाती है मानो वह को फिटनेस प्रोग्राम हो। घर उसका एक नाम था जो सूरज जैसा लगता था, और फिर भी पर्याप्त अप्रसन्नतापूर्वक बर्फ में एक बचाव उपकरण पड़ा हुआ था, एक नारंगी रंग की रिंग जिस पर काले अक्षरों में नाम लिखा था, मानो पर्वत स्वयं ये याद दिलाना चाहता हो कि ऊंचाई के मौसम में हर आनंद को एक बचाव तंत्र की जरूरत होती है। ये रिंग आधी सफेद में आधी गहरे फर्श पर पड़ी थी, एक मूर्खता, एक विज्ञापन, एक प्रतीक, यही है आधुनिकता। बाहर काले चमकदार पत्थरों के आंगन पर, पत्थर की दीवार और ठिठुरे हुए झाड़ झंखाड़ के बीच गोल मेजें खड़ी थीं, सफेद कपड़ों से ढकी हुई मानो वे वेदियां हो, और वे थीं भी बस ये कि अब पूजा संतों की नहीं बल्कि शर्करों, वसाओं, सुगंध पदार्थों और उस मीठे वादे की थी कि आज एक बार सब कुछ करने की इजाजत है। चपटी लकड़ी की पेटियों में छोटी छोटी चॉकलेट की गोलियां पड़ी थीं, हल्की और गहरी कतारों में, मानो यहां कोई ऐसी ऑर्डनम्स लाइडनशाफ्ट काम कर रही हो जो आनंद को भी अव्यवस्थित होने की अनुमति नहीं देती। बगल में सैंडविच बिस्कुट, अंगूठी आकार के बेकरी पदार्थ, पेस्टल रंगों के झागदार टुकड़े जो ऐसे दिखते थे मानो किसी ने बादलों को हिस्सों में बांट दिया हो, और एक गिलास में लकड़ी की सीखें लगी थीं तैयार मार्शमेलोज में घुसने के लिए, या उन गर्म पेयों में जिन्हें एक ऐसे शब्द से नवाजा जाता है जो थोड़ा बचपन जैसा लगता है और थोड़ा सांत्वना जैसा, कोको, बच्चे, क्योंकि बच्चे थे वहां, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसी संस्थाओं में बच्चे ही असली सत्यदूत होते हैं, वे वैभव को शिष्टाचार पर नहीं बल्कि खाद्य योग्यता पर परखते हैं। मेजों के किनारों पर खड़े थे और उस लालची मासूमियत से जो बड़ों को भावुक भी करती है और साथ ही बेनकाब भी, सफेद, गुलाबी और हरे झागदार घनों को देखते थे मानो वे रत्न हो। बड़े बगल में खड़े थे और ऐसा दिखावा कर रहे थे मानो उनकी ध्यानदेही बातचीत पर हो, जबकि उनके हाथ पहले ही नैपकिनों की ओर टटोल रहे थे। इस सब पर एक रोशनी पड़ी थी, ठंडी और दयालु, सर्दियों की धूप, और फिर मानो किसी ने प्रकृति को किसी वास्तुकार की सनक से बदल दिया हो। वहां ये पारदर्शी गुंबद खड़े थे, प्लास्टिक और डंडों के ढांचे से बनी भू आकृतिक बुलबुले, जिनमें लोग ऐसे बैठे थे जैसे किसी प्रदर्शनी में, उन्हें दूधिया लहरदार त्वचा के पार देखा जा सकता था, थोड़ा विकृत, थोड़ा दूर दूर। और हांस कैस्टॉर्प, जिसने बर्कहॉफ समय को जाना था, अनायास ही उन लेटने वाली हौलों के बारे में सोचने लगा जिन्होंने कभी वायु चिकित्साओं का शासन चलाया था। बस अब कोई लेटता नहीं है उपचार के लिए, बल्कि बैठता है विशेषाधिकार के लिए, निजता एक वेलनेस सेवा के रूप में। यह, यदि आप चाहें, आधुनिक लेटने की कुर थी, कंबलों और थर्मामीटरों के बिना, बल्कि प्लेक्सीग्लास गुंबदों और भेड़ की खालों के साथ। ऐसी ही एक गुंबद में एक सफेद खाल पड़ी थी जैसे ताजा गिरी बर्फ। उस पर एक छोटी मेज खड़ी थी, काली और पतली टांगों वाली, और उस पर गिलास, एक वाइन ग्लास, पानी के गिलास, एक विंड लाइट जिसमें एक लौ टिमटिमा रही थी, एक बहुत छोटी, बहुत बहादुर लौ, इस सारी सुव्यवस्थित ठंड के बीच। और प्रवेश द्वार पर मानो वह इस कांच के स्विशनराई का रक्षक हो, एक छोटा भूरा खुंखराले बालों वाला कुत्ता बैठा था एक छोटे से कोट में, सजा धजा जैसे कोई मरीज। कोई आदरणीय पाठिका, आदरणीय पाठक इस बिंदु पर उस पूडल के बारे में सोच सकता है जिसने कभी किसी दूसरे महान जर्मन कृति में हेरन डॉक्टर को बहकाया था। कोई, यदि वह स्वयं को मनोरंजित करने के लिए प्रवृत्त हो, इस छोटे से प्राणी में वर्तमान के शैतान को पहचान सकता है। अब न काला, न गंधक युक्त, बल्कि टेडीसा थेरेपी उपयुक्त, और फिर भी एक दहलीज का प्रहरी।